एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज की जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में या ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जो कह सकते हैं कि भविष्य के बारे में हमारी सोच को हिलाकर रख देती है। ये है रे कुर्ज़वील की 1999 में आई किताब द एज ऑफ स्पिरिचुअल मशीन्स। मैं हूं आपकी पहली मेजबान
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। और देखिए, ये किताब भले ही 20-25 साल पुरानी हो गई हो,
हाँ,
लेकिन आज के जमाने में जब हम हर रोज एआई की नई बातें सुन रहे हैं, मशीन लर्निंग, चैटबॉट्स,
बिल्कुल,
और जिस तरह इंसान और मशीन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लगता है ये किताब कल ही लिखी गई हो।
सही कह रहे हैं। ये सोचने पे मजबूर करती है कि भाई हम जा किधर रहे हैं, क्या वाकई एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हो रही है।
हाँ, और इसी का जो मूल विचार है ना, सबसे क्रांतिकारी आइडिया कह लीजिए, वो है कुर्ज़वील का त्वरित विकास का नियम, लॉ ऑफ एक्सेलरेटिंग रिटर्न्स।
त्वरित विकास का नियम
सुनने में थोड़ा भारी लगता है।
है थोड़ा, मतलब ये कि तकनीकी तरक्की सीधी रेखा में नहीं चलती,
एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे नहीं।
अच्छा, तो फिर कैसे?
ये घातीय, एक्सपोनेंशियल है, मतलब रॉकेट की तरह, पहले धीरे, फिर तेज, फिर बहुत तेज, हर कदम पिछले से कहीं ज्यादा बड़ा।
ओह, मतलब जैसे एक स्नोबॉल पहाड़ से नीचे लुढ़कता है, वैसे शुरू में छोटा, फिर बड़ा होता जाता है तेजी से।
बिल्कुल सही समझा आपने। यही वो नियम है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम आमतौर पर सीधी गति से सोचते हैं।
चलिए इसी अनोखे नियम को थोड़ा और खोलते हैं।
हाँ, लेकिन नियम से पहले उस इंसान के बारे में जानना जरूरी है जिसने ये नियम दिया, रे कुर्ज़वील।
ये सिर्फ कोई भविष्य बताने वाले नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एक असल आविष्कारक है, प्रैक्टिकल आदमी, कंप्यूटर वैज्ञानिक, जिन्होंने तकनीक को सिर्फ समझा नहीं, बनाया है।
हाँ, मैंने भी पढ़ा था, फ्लैटबेड स्कैनर, और वो जो नेत्रहीनों के लिए टेक्स्ट को आवाज में बदलने वाली मशीन थी।
जी हाँ, टेक्स्ट टू स्पीच, और वो कुर्ज़वील K250 सिंथेसाइजर जिसने पहली बार पियानो की असली आवाज निकाली थी।
कमाल है, तो मतलब वो हवा में बातें नहीं कर रहे, उनके पास अनुभव है, डेटा है।
सही बात है, वो दशकों के तकनीकी ट्रेंड्स को देखते हैं। जैसे मूर का नियम है ना कि कंप्यूटर चिप की ताकत हर 2 साल में दुगनी हो जाती है।
हाँ, वो तो सुना है।
कुर्ज़वील उसे और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं ये सिर्फ चिप्स की बात नहीं, ये हर तरह की जानकारी पर आधारित तकनीक, यहाँ तक कि जैविक विकास पर भी लागू होता है। इसी को वो त्वरित विकास का नियम कहते हैं।
अच्छा, मतलब ये एक यूनिवर्सल पैटर्न जैसा है।
उनके हिसाब से तो यही है, और इसी बुनियाद पर वो भविष्य के बारे में इतने बड़े, कभी कभी तो चौंकाने वाले दावे करते हैं जो सुनने में साइंस फिक्शन लगे।
हाँ, लगते तो हैं,
पर उनके पीछे एक तर्क होता है, एक डेटा होता है। हालांकि ये भी सच है कि कई लोग मानते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही आशावादी हैं।
तो फिर ये किताब द एज ऑफ स्पिरिचुअल मशीन्स आखिर है किस बारे में, मतलब इसका निचोड़ क्या है?
देखिए, मोटे तौर पर ये 21वीं सदी का एक नक्शा है, टेक्नोलॉजी और इंसानियत का भविष्य कैसा होगा इसका एक खाका, और सबसे बड़ा दावा, सबसे बोल्ड दावा यह है कि मशीनें, कंप्यूटर, न सिर्फ इंसानी दिमाग जितने स्मार्ट होंगे,
बल्कि उससे भी ज्यादा,
कहीं ज्यादा, अकल्पनीय रूप से ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट हो जाएंगे।
सुपर इंटेलिजेंट मशीनें, और ये सिर्फ कंप्यूटर के तेज होने की बात नहीं है जैसा आप कह रहे थे।
नहीं, कुर्ज़वील का एक और बड़ा आइडिया है। वो कहते हैं कि यह तकनीकी विकास जो है ना, ये असल में पृथ्वी पर जीवन के विकास का अगला कदम है।
अगला कदम
मतलब जैसे पहले जीवन ने जानकारी को डीएनए में सहेजा, फिर दिमाग विकसित हुए, उन्होंने न्यूरल पैटर्न में जानकारी रखी, अब तकनीक, खासकर कंप्यूटिंग, जानकारी को संभालने का नया और ज्यादा तेज तरीका बन गई है।
हो, तो हम टेक्नोलॉजी के जरिए विकास को तेज कर रहे हैं।
बिल्कुल, बोल, इसे 6 युगों या 6 epochs में बांटते हैं। पहला युग फिजिक्स और केमिस्ट्री, जहां जानकारी अणुओं में थी। दूसरा बायोलॉजी, डीएनए में। तीसरा दिमाग, न्यूरल पैटर्न में। चौथा टेक्नोलॉजी, जिसे दिमाग ने बनाया। पांचवां टेक्नोलॉजी और इंसानी बुद्धि का विलय, जो अब हो रहा है या होने वाला है।
और छठा?
छठा युग, जब ये बुद्धिमत्ता पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगी, ब्रह्मांड का जागृत होना।
बापरे, ये तो बहुत बड़ी बात है।
हाँ, और इस पूरी कहानी को समझाने के लिए वो AI, दिमाग कैसे काम करता है, नैनो टेक्नोलॉजी,
मतलब बहुत ही छोटी मशीनें।
हाँ, आणविक स्तर की मशीनें, और जेनेटिक्स, इन सब पर विस्तार से बात करते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि उन्होंने सिर्फ थ्योरी नहीं दी, उन्होंने बाकायदा तारीखें बताई।
तारीखें?
जैसे
हाँ,
2009, 2019, 2029 और यहां तक कि 2099 के लिए भविष्यवाणियां की कि कब पहनने वाले कंप्यूटर आएंगे, कब $1000 का कंप्यूटर इंसान के दिमाग से तेज हो जाएगा।
अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प है। क्या उनकी भविष्यवाणियां सच हुई?
कुछ तो कमाल की हद तक सच हुई, कुछ में थोड़ा आगे पीछे हुआ, पर दिशा काफी हद तक सही पकड़ी उन्होंने।
लेकिन ये सब जो तकनीक की बातें हुई, किताब का नाम तो स्पिरिचुअल मशीन्स है, इसका क्या मतलब?
यही तो सबसे गहरा पहलू है। ये किताब हमें बड़े सवालों के सामने ला खड़ा करती है। चेतना क्या है? अगर आप अपने दिमाग को कंप्यूटर पर अपलोड कर दें तो क्या वो आप ही होंगे?
बाप रे, ये तो बहुत गहरा सवाल है।
और अगर पहचान शरीर से अलग हो सकती है तो मौत का क्या मतलब? स्पिरिचुअल मशीन्स नाम यही इशारा करता है कि शायद ये तकनीकी बदलाव सिर्फ भारी नहीं, ये अंदरूनी भी है, एक तरह की आध्यात्मिक खोज।
सुनने में ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अजीब भी है और रोमांचक भी।
तो इस बड़े विचार को कुर्ज़विल ने तीन हिस्सों में बांटा है किताब में। पहला हिस्सा जो है वो इसी त्वरित विकास के नियम की नींव रखता है।
अच्छा, मतलब वो साबित करते हैं कि ये नियम काम करता है।
हाँ, वो तर्क देते हैं कि ये जो घातीय तरक्की है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये ब्रह्मांड की शुरुआत से चल रही है। चीजों के बनने की रफ्तार, फिर जीवन का विकास, फिर इंसानों का, फिर औजारों का, हर बड़ा बदलाव पिछले से तेज होता गया है।
तो मतलब ये सिर्फ कंप्यूटर की स्पीड की बात नहीं, ये इतिहास का एक पैटर्न है।
बिल्कुल। अध्याय तीन में तो उन्होंने ढेरों ग्राफ दिए हैं। कंप्यूटर की स्पीड, मेमोरी की क्षमता, कीमत कैसे गिरी है, ये सब घातीय रूप से बदला है।
और ये अलग अलग टेक्नोलॉजी आने पर भी जारी रहा, जैसे वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर, फिर चिप्स।
हाँ, यही कमाल की बात है। टेक्नोलॉजी बदली पर वो घातीय ट्रेंड बना रहा, जैसे कोई अंदरूनी ताकत हो जो इसे आगे बढ़ा रही है।
ठीक है, मान लिया कि रफ्तार बढ़ रही है, पर असली इंटेलिजेंट मशीन बनेगी कैसे? किताब का दूसरा भाग शायद इसी पर होगा।
जी हाँ, दूसरा भाग ऐसी पर है कि हम ऐसी मशीनें बनाएंगे कैसे, और किर्ज़विल का जवाब है अपने दिमाग को समझकर और उसकी नकल करके।
अपने दिमाग की नकल करके, मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग।
कुछ वैसा ही। अध्याय चार में वो अंदाजा लगाते हैं कि इंसान के दिमाग की कंप्यूटेशनल पावर कितनी है, और भविष्यवाणी करते हैं कि 2020 तक पर्सनल कंप्यूटर वहां पहुंच जाएंगे।
2020 तक? क्या ये हुआ?
पूरी तरह तो नहीं, लेकिन हाँ, कंप्यूटर बहुत शक्तिशाली हो गए। दिशा तो सही थी। फिर अध्याय पांच में वो ब्रेन स्कैनिंग तकनीकों की बात करते हैं, एडवांस्ड MRI या भविष्य के नैनोटेक स्कैनर्स, जिनसे हम दिमाग के सर्किट को, उसके काम करने के तरीके को समझ सकें।
और ये समझ AI बनाने में कैसे मदद करेगी?
अध्याय छह यही बताता है। दिमाग के कई सिद्धांत, जैसे पैरेलल प्रोसेसिंग यानी एक साथ कई काम करना, या न्यूरॉन्स का नेटवर्क बनाना, ये सब AI, खासकर न्यूरल नेटवर्क्स में पहले से इस्तेमाल हो रहे हैं।
अच्छा, जैसे डीप लर्निंग वगैरह में होता है।
हाँ बिल्कुल। तो जैसे जैसे हम दिमाग को बेहतर समझेंगे, वैसे वैसे ज्यादा बेहतर, ज्यादा इंसानी AI बना पाएंगे।
समझ गई। और फिर आता है तीसरा हिस्सा, जो भविष्यवाणियों वाला था।
हाँ, तीसरा भाग जो सबसे मशहूर है। यहाँ वो इन सब तर्कों को मिलाकर 21वीं सदी की एक टाइमलाइन बनाते हैं और बताते हैं कि इसका मतलब क्या होगा।
जरा बताइए उन भविष्यवाणियों के बारे में। 2009 के लिए क्या कहा था उन्होंने?
2009 के लिए उन्होंने कहा था कि पोर्टेबल कंप्यूटर आम होंगे, पहनने वाले गैजेट्स वियरेबल्स आएंगे, आवाज पहचानने वाली तकनीक स्पीच रिकग्निशन बेहतर होगी, और रियल टाइम में भाषा बदलने वाले टूल भी होंगे।
अरे वाह, इसमें से तो काफी कुछ आज सच है। स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, गूगल ट्रांसलेट।
बिल्कुल, उनकी सटीकता कमाल की थी इस मामले में।
और 2019 के लिए?
2019 के लिए उन्होंने कहा था कि कंप्यूटर और अदृश्य हो जाएंगे, मतलब हमारे कपड़ों में, आसपास के माहौल में मिल जाएंगे। ऑगमेंटेड रियलिटी डिस्प्ले आम होंगे, वर्चुअल असिस्टेंट होंगे, और सेल्फ ड्राइविंग कारें भी दिखने लगेंगी।
यहाँ भी रुझान तो सही है। ऑगमेंटेड रियलिटी उतनी आम नहीं हुई शायद, पर वर्चुअल असिस्टेंट तो सबके फोन में है। सेल्फ ड्राइविंग पर भी काम तेजी से चल रहा है।
सही का, रुझान सही पकड़े उन्होंने।
लेकिन वो जो आप कह रहे थे, असली धमाका तो 2029 में।
हाँ, 2029 कर्ज़विल के लिए मील का पत्थर है। उनका मानना है कि इस साल तक सिर्फ $1000 में जो कंप्यूटर मिलेगा,
हाँ,
उसकी प्रोसेसिंग पावर एक इंसान के पूरे दिमाग के बराबर होगी।
$1000 में इंसानी दिमाग जितनी ताकत, ये तो अविश्वसनीय लगता है।
और सिर्फ हार्डवेयर नहीं, वो मानते हैं कि 2029 तक सॉफ्टवेयर भी इतना उन्नत हो जाएगा कि वो ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लेगा।
ट्यूरिंग टेस्ट मतलब मशीन से बात करके पता नहीं चलेगा कि वो मशीन है।
जी हाँ, इतनी स्वाभाविक बातचीत होगी। और इसी दशक में वो नैनोबॉट्स की बात करते हैं।
वो छोटी मशीन है?
हाँ, जो हमारे खून में तैर सकेंगी, और इनके जरिए इंसान और मशीन का सीधा विलय शुरू होगा। ये नैनो बॉट्स हमारे दिमाग को सीधे क्लाउड से, इंटरनेट से जोड़ देंगे।
दिमाग का क्लाउड से जुड़ना मतलब हम सीधे गूगल सर्च कर पाएंगे, सोच कर ही।
शायद उससे भी कहीं ज्यादा, हमारी सोच, हमारी यादें क्लाउड पर स्टोर हो सकेंगी। हम दूसरों के दिमाग से सीधे जुड़ पाएंगे। संभावनाएं अनंत हैं।
ये तो इंसान होने की परिभाषा ही बदल देगा।
बिल्कुल, और भविष्य और भी आगे जाता है, 2099 तक।
हाँ, 2099 में क्या?
कुर्ज़वाइल के अनुसार इंसान और मशीन का फर्क लगभग खत्म हो चुका होगा। ज्यादातर सोचने वाली चेतनाएं वो सॉफ्टवेयर आधारित होंगी।
सॉफ्टवेयर आधारित मतलब
वो या तो वर्चुअल दुनिया में रहेंगी या फिर नैनो बॉट्स के झुंड के रूप में भौतिक दुनिया में। शरीर की जरूरत नहीं होगी, वो अमर हो जाएंगे।
अमर?
हाँ, और तरक्की इतनी तेज होगी कि जो इंसान तकनीक से अपनी क्षमता नहीं बढ़ाएंगे उनके लिए दुनिया समझना भी मुश्किल होगा।
ये सब सुनकर तो सच में दिमाग घूम रहा है। लेकिन आपने कहा था कि किताब चेतना जैसे गहरे सवालों पर भी बात करती है।
हाँ, आखिरी अध्याय इसी का है। चेतना का वो जो कठिन सवाल है ना, कि ये एहसास, ये मैं होने का भाव कहाँ से आता है।
हाँ, वो तो दार्शनिकों के लिए भी पहेली है।
कुर्ज़वाइल का नजरिया थोड़ा अलग है, कार्यात्मक फंक्शनलिस्ट है। वो कहते हैं अगर कोई मशीन वो सब कुछ कर सकती है जो एक सचेत इंसान करता है, सोच सकती है, सीख सकती है, महसूस कर सकती है या ऐसा व्यवहार कर सकती है,
तो वो सचेत है।
व्यवहारिक रूप से हाँ। उनके लिए चेतना कोई आत्मा या रहस्यमयी चीज नहीं, बल्कि जानकारी को प्रोसेस करने का एक बहुत जटिल पैटर्न है।
तो अगर हम वो पैटर्न कॉपी कर लें तो चेतना भी कॉपी हो जाएगी।
उनके तर्क के अनुसार हाँ, पहचान पैटर्न में है न कि उस चीज में जिससे वो पैटर्न बना है।
और ये सब होकर रहेगा, वो ऐसा मानते हैं, इसे रोक नहीं सकते।
हाँ, अध्याय 12 इसी अनिवार्यता पर जोर देता है। वो कहते हैं कि ज्ञान पाने की, अपनी सीमाएं तोड़ने की, शक्ति बढ़ाने की जो हमारी अंदरूनी इच्छा है, वही हमें इस रास्ते पर ढकेल रही है। ये इंसान की फितरत है।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत के मुख्य विचारों को समेटें तो पहला और सबसे जरूरी तो वही त्वरित विकास का नियम है।
बिल्कुल, ये समझना कि बदलाव अब घातीय है, विस्फोटक है, और ये रफ्तार और तेज होगी। वो जो कहते हैं ना कि 21वीं सदी में 100 साल नहीं बल्कि 20,000 साल जितनी तरक्की होगी, ये दिमाग में बिठाना जरूरी है।
हाँ, ये हमारी सोच को ही बदल देता है। और दूसरा बड़ा विचार ये कि विकास खुद एक सूचना प्रक्रिया है, DNA से दिमाग फिर तकनीक।
सही, हम इंसान जैसे जैविक विकास और तकनीकी विकास के बीच एक पुल हैं। हम शायद विकास की अगली कड़ी को जन्म दे रहे हैं जो हमसे ज्यादा तेज और शक्तिशाली होगी।
ये सोचना कितना अजीब है। तीसरा, सुपर इंटेलिजेंस का आना तय है। ये थोड़ा डरावना भी लगता है।
हाँ, ये एक अहम मुद्दा है। कुर्ज़वाइल मानते हैं कि ये होकर रहेगा। सवाल अगर का नहीं, कब का है, और हमें इसके परिणामों के बारे में सोचना होगा।
चौथा था वो इंसान और मशीन का विलय। ये हम बनाम वो नहीं बल्कि हम और वो का भविष्य है।
हाँ, उनका नजरिया संश्लेषण का है। दिमागी इम्प्लांट्स, नैनोबॉट्स, हम तकनीक को अपने अंदर समाहित कर लेंगे। प्राकृतिक और कृत्रिम का भेद मिट जाएगा।
जैसे आज हम चश्मा पहनते हैं या पेसमेकर लगवाते हैं, वैसे ही भविष्य में और उन्नत तकनीकें हमारे शरीर का हिस्सा बन जाएंगी,
शायद उससे भी कहीं ज्यादा गहराई से। और पांचवा, जो सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, इंसानियत, चेतना, पहचान, इन सब की परिभाषा बदल जाएगी।
हाँ, वो पैटर्न वाली बात कि मैं, मेरा शरीर नहीं, मेरा सूचना पैटर्न हूँ।
जी, और अगर पैटर्न कॉपी हो सकता है तो क्या मैं भी कॉपी हो सकता हूँ? क्या डिजिटल अमरता संभव है? ये गहरे दार्शनिक सवाल है।
छठा विचार थोड़ा विवादास्पद था कि हमारा जैविक शरीर पुराना पड़ जाएगा।
हाँ, वो मानते हैं कि हमारे शरीर और दिमाग बहुत नाजुक और सीमित हैं। विकास हमें इनसे आगे ज्यादा टिकाऊ और शक्तिशाली प्लेटफॉर्म पर ले जाएगा, सॉफ्टवेयर में या उन्नत रोबोटिक बॉडी में, अपनी जैविक सीमाओं से मुक्ति।
और सातवां, वो स्पिरिचुअल वाला एंगल कि ये सब एक आध्यात्मिक खोज है।
हाँ, सीमाएं तोड़ना, ज्ञान बढ़ाना, दुख और मौत को हराना, ये कहीं ना कहीं इंसान की पुरानी आध्यात्मिक इच्छाएं ही तो हैं। कुर्ज़वाइल इसे तकनीक के जरिए पूरा होते देखते हैं, अमलता, सर्वज्ञता की तरफ एक तकनीकी यात्रा।
वाकई किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं। पहली तो वही घातीय वृद्धि वाली।
हाँ, तकनीक का इतिहास दिखाता है कि तकनीकी बदलाव घातीय है, इसलिए हम 21वीं सदी में 100 साल की प्रगति का अनुभव नहीं करेंगे। ये आज की दर से 20,000 साल की प्रगति जैसा होगा।
ये हमारी सीधी सोच को चुनौती देती है।
बिल्कुल।
दूसरी वो पहचान वाली बात भी बहुत दमदार है।
जी, हम पदार्थ और ऊर्जा का एक पैटर्न है और उस पैटर्न को बदला और बनाया रखा जा सकता है। हमारी पहचान उन खास परमाणुओं से नहीं बंधी है जो आज हमारे शरीर बनाते हैं, बल्कि जानकारी के पैटर्न की निरंतरता से है जो हमारी यादों, कौशल और व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है।
ये माइंड अपलोडिंग जैसी चीजों की नींव रखता है।
सोचकर ही अजीब लगता है।
और तीसरी जो आध्यात्मिकता से जोड़ती है।
हाँ, विकास अधिक जटिलता, अधिक सुंदरता, अधिक ज्ञान, अधिक बुद्धि और प्रेम जैसे सूक्ष्म गुणों के उच्च स्तर की ओर बढ़ता है। ईश्वर को भी इन सभी चीजों के रूप में वर्णित किया गया है, इसलिए विकास एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है और हम ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। ये तकनीक को एक ऊंचे मकसद से जोड़ता है।
ये बहुत ही अलग नजरिया है, पर अब सवाल यह है कि इन सब बड़ी बड़ी बातों का हमारी आज की जिंदगी से क्या लेना देना, मतलब हम क्या करें इसका?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख है वो घातीय सोच अपनाने की। बिजनेस में है तो समझना कि कौन सी इंडस्ट्री अचानक तेजी पकड़ सकती है। अपनी जिंदगी प्लान कर रहे हैं तो ये मानकर चलना कि भविष्य बहुत अलग हो सकता है। लचीलापन और सीखते रहने की आदत डालनी होगी।
हाँ, और शायद करियर और पढ़ाई में भी बदलाव लाना होगा, उन चीजों पर ध्यान देना जो मशीनें नहीं कर सकती।
बिल्कुल, क्रिएटिविटी, मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग, लोगों को समझना, सहानुभूति, नैतिक फैसले लेना, ये स्किल ज्यादा जरूरी हो जाएंगे। रटने वाले या दोहराए जाने वाले काम तो मशीनें कर लेंगी, हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना होगा।
जैसे आजकल कोडिंग जरूरी मानी जाती है, कल शायद कुछ और सीखना पड़े।
सही बात है। निवेश के नज़रिए से देखें तो ये किताब बताती है कि किन टेक्नोलॉजी पर नज़र रखनी चाहिए। कंप्यूटिंग, जेनेटिक्स, नैनोटेक, कहाँ पैसा और दिमाग लग रहा है, किसी चीज़ की कीमत कैसे गिर रही है और परफॉर्मेंस कैसे बढ़ रही है, ये देखना ज़रूरी है।
और व्यक्तिगत स्तर पर हमारे स्वास्थ्य या जीवन जीने के तरीके पर क्या असर?
ये हमें अपनी पहचान, अपनी नश्वरता के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, और व्यवहारिक रूप से ये शायद हमें अपने स्वास्थ्य पर और ज़्यादा ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। कुर्ज़वील खुद बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं।
हाँ, सुना है वो बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं।
हाँ, ताकि वो भविष्य की उन तकनीकों का अनुभव करने के लिए जी सकें जिनकी वो बात करते हैं। तो एक तरह से आज सेहतमंद रहना भविष्य के लिए एक निवेश है।
ये तो है। और आखिर में वो नैतिक और सामाजिक तैयारी वाली बात,
वो शायद सबसे जरूरी है। ये किताब एक तरह की चेतावनी भी है। अगर सुपर इंटेलिजेंस आ गई तो क्या होगा? क्या वो हमारे कंट्रोल में रहेगी? उसके अधिकार क्या होंगे? समाज पर क्या असर पड़ेगा? अमीर गरीब की खाई बढ़ेगी? इन सवालों पर आज से ही गंभीर चर्चा जरूरी है।
तो इस पूरी बातचीत से मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही निकल कर आई है कि हमें इस घातीय बदलाव को स्वीकार करना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी। हम शायद वाकई एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़े हैं।
और मेरे लिए सबसे दिलचस्प ये सोचना है कि इंसान होने का मतलब ही बदल रहा है। चेतना, जीवन, मौत, ये सब परिभाषाएं शायद स्थिर नहीं हैं। भविष्य इंसानों के खत्म होने का नहीं, बल्कि उनके बदलने का, मशीन के साथ मिलकर कुछ नया बनने का हो सकता है। और शायद इसीलिए हमारे मानवीय गुण और भी ज्यादा कीमती हो जाएंगे।
उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है, ये हमें भविष्य के आईने में झांकने पर मजबूर करती है, चाहे वो तस्वीर हमें कितनी भी अजीब क्यों न लगे। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।